तो नारद जी कह रहे अर्जुन, जब चंद्रहास को इस प्रकार पुत्र का राज्य भी मिला और चंपक माली नाम वाली पत्नी भी प्राप्त हो गई, तब वह रात्रि के समय दुष्ट बुद्धि के पास जाकर उसे प्रणाम करने के लिए अपनी उस पत्नी के साथ एक सुंदर गजराज पर सवार हुआ। उस समय मृदंग ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार राजा चंद्रहास अपने श्वशुर का दर्शन करने की अभिलाषा से बड़ी उतावले के साथ उसके भवन की ओर चला। तब जो मंत्री संदेशवाहक मंत्री जो होता है वो दुष्ट भाषा से जाकर उससे इसकी सूचना देते हुए कहने लगे, मंत्री देखिए ये नए महाराज चंद्रहास आपके पास पधार रहे हैं, विभो ये आपके तथा महाराज कुंतल नरेश के जामाता है, यानी कि जवाई है, दामाद है आपके, ये आपके तथा केवल आपके दामाद नहीं कुंतल नरेश के भी दामाद है ये, क्योंकि चंद्रहास को दो पत्नी प्राप्त हुई ना, विषया और चंपक मालिनी। तो उनका यह कथन सुनकर दुष्ट बुद्धि कुपित हो उठा और इस प्रकार कहने लगा, दुष्टो मैं तुम सभी पापियों की जिह्वा जड़ से काट लूंगा, मूर्खो इस भूतल पर कुंतल नरेश के अतिरिक्त दूसरा कौन हमारा राजा हो सकता है। तब दूतों ने कहा, स्वामी जरा आंख उठाकर तो देखिए। तब तक चंद्रहास अपनी पत्नी चंपक मालिनी के साथ सामने आता दिख पड़ा। उस समय दुष्ट बुद्धि अपने नेत्रों को पोंछ कर चंद्रहास की ओर देखने लगा और विचारने लगा कि संभवतः यह मदन आता होगा, क्योंकि इसके आगे राजकुमारी चंपक मालिनी विद्यमान है। फिर वह उच्च स्वर से बोल उठा, रे रे मदन, तूने ये क्या कर डाला। दुष्ट बुद्धि विचार कर ही रहा था कि चंद्रहास सामने उपस्थित हो गया और उस हाथी से उतरकर उसने मंत्र के दोनों पैर पकड़ लिए। तो चंद्रहास बहुत नम्र स्वभाव के थे, तो ये श्वशुर हैं, श्वशुर को पिता समान है, तो उनको पिता की तरह सम्मान देने लगे, उनके पैर पकड़ लिए। तब दुष्ट बुद्धि चंद्रहास की ठोड़ी पकड़कर पूछने लगे, क्या आप चंडिका देवी के रमणीय मंदिर पर नहीं गए। आपको याद है ना, पिछली बार हमने इसका वर्णन किया था कि दुष्ट बुद्धि ने उन्हीं चांडालों को वापस लगाया है चंद्रहास को मारने के लिए। चंद्रहास को युक्ति से चंडिका के मंदिर में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन चंद्रहास यहां गए और चंडिका के मंदिर में कुछ और ही गया। आपको पता है कौन गया है। क्या आप चंडिका देवी के रमणीय मंदिर पर नहीं गए, ऐसी अवहेलना तो मेरे कुटुंब का समूल विनाश करने में कारण हो सकती है। चंद्रहास ने उत्तर दिया, स्वामी मैं चंदन और पुष्पों से भरे हुए पात्र को लेकर जा ही रहा था, तब तक कुंतलाधिपति की आज्ञा का पालन करने वाले मदन ने मेरे पास आकर मुझसे वहां जाने से रोक दिया। बोले तो मदन ने तो रोका मुझे और स्वयं ही वो देवी के मंदिर चल दिए, वो जो पूजा की जो प्लेट जो बनाई थी मैंने वो खुद ही चल दिए और मुझे यहां भेज दिया। तो चंद्रहास के ऐसे कठोर एवं मर्मभेदी वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि बाल बिखरे तथा हाथ ऊपर को उठाए यौ विलाप करते हुए चंडिका मंदिर को चला। क्यों? क्योंकि वो तो माने का आदेश, जो भी चंडिका के मंदिर में जाएगा तो चांडाल को क्या बोला था कि इसको मार डालना, तो अभी तो कौन मारा जाएगा, मदन ही मारा जाएगा। तो ये बात सोच के दुष्ट बुद्धि पागल की तरह दौड़ने लगे। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही उस गड्ढे में गिरता है, यह ध्रुव सत्य है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न पूर्वक प्राणियों का हित ही करना चाहिए। उस समय दुष्ट बुद्धि तमसा छन्न भयंकर मार्ग में पृथ्वी पर गिरते उठते बड़ी तेजी से चल रहा था। नगर के बाहर उसे स्मशान भूमि दिख पड़ी जहां चीताएं जल रही थी और वायु के चलने से चीता भस्म उड़ रही थी। ऐसा होता ना, स्मशान भूमि सामान्य तौर पर सिटी के बाहर होता है, थोड़ा दूर नगर के बाहर गांव के बाहर होता है। तो जब दुष्ट बुद्धि वहां से पसार हो रहा था तो एक चीता जल रही थी और वायु के चलने से चीता की भस्म भी उड़ रही थी। यहां बहुत ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो दुष्ट बुद्धि को देखकर भूत वेताल और कंकाल परस्पर कहने लगे, तो स्मशान में अक्सर ये सब होता है ना, भूत वेताल कंकाल पिशाच चुड़ैल, तो कहने लगे अरे भाइयों देखो या कोई हमसे भी बढ़कर पापी आ रहा है। तब तक एक दूसरा प्रेत बोल उठा, हमसे बढ़कर कौन हो सकता है, मैं तुम लोगों का एक छोटा सा सेवक हूं, फिर भी मैंने तीन ब्राह्मणों की हत्या की है। मुझे तुम लोग ऐसा समझो कि मैं विश्वासघाती, धन का अपहरण करने वाला, पराई निंदा में तत्पर, भूत प्राणियों का घातक तथा सर्वदा सर्वपुरुषों को भय प्रदान करने वाला था। उसी प्रकार अब ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे इस भाई की ओर दृष्टिपात करो। यह पतिकों का वध करने वाले मेरे उस पुत्र से भी आगे बढ़ा हुआ है। तब तक एक ब्रह्म राक्षस हंसता हुआ सो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र और भाई महान पापी हैं और तुम उनसे भी बढ़कर ब्रह्म हत्यारे हो, परंतु यह जो दूसरा आ रहा है यह ना तो तुम्हारे समान है और ना मेरी ही संता में आ सकता है। यह मित्र द्रोही, कृतज्ञ और विश्वासघातक है। ऐसा अत्यंत ईर्ष्यालु एवं दुष्टात्मा पापी का मुख भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए तुम लोगों का यहां से भाग जाना ही उचित है। तो भूत वेतार इत्यादि कह रहे हैं कि इसको देखकर भाग गए यहां से, तो और भी हमें पाप का पाकी बनना पड़ेगा। यह महान पापी इधर ही आ रहा है, इसलिए मैं तो दूर हट जाता हूं। ऐसी आलोचना करके उन भूतों तथा दुष्ट बुद्धि को देखकर स्मशान भूमि से भाग खड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कि दुष्ट बुद्धि कितना पापी होगा कि उसको देखकर भूत वैताल कंकाल इत्यादि भी छोड़ के भाग गए उसको, जो स्वयं अपने पाप का फल भुगत रहे थे। इधर पुत्र शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि चीता की जलती हुई लुकाठी हाथ में लेकर मंदिर की ओर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। मंदिर में पहुंचकर दुष्ट बुद्धि ने देखा कि क्षमा आदि 32 गुणों से संपन्न सच्चरित्र योगियों और तपस्वियों में श्रेष्ठ, अर्थ और काल का ज्ञाता, शांत स्वभाव तथा अपने मन वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखने वाला मेरा पुत्र मदन भूतल पर गिरे हुए टूटे कलशों वाले प्रासाद तथा पाखंडी जनों द्वारा तोड़े हुए काश्मीर लिंग की भांति तलवार और शूलों से विदीर्ण किए गए पशु के समान चंडिका के सामने पड़ा है, क्योंकि चांडाल ने तो उसी का वध कर दिया था ना। दुष्ट बुद्धि का जैसा आदेश था वैसे तो वो थोड़ी मदन को, ये चंद्रहास को मारना है, मदन को नहीं मारना है, ऐसा थोड़ी दुष्ट बुद्धि ने बोला था। बोले जो भी चंडिका के मंदिर में है उसको मार डालना है, और युक्ति से चंद्रहास को भेजा था, लेकिन पहुंच गए मदन, इसलिए मदन मारे गए। अपने पुत्र मदन की यह वह दशा देखकर दुष्ट बुद्धि का मनोरथ छिन्न भिन्न हो गया। उसने समझ लिया कि अब तो मेरे वंश की जड़ ही कट गई। फिर तो हाथ में ली हुई चिता की लुखाटी को फेंक दिया और आतुर होकर वह अपने पुत्र की ओर निहारने लगा। तत्पश्चात उस मरे हुए पुत्र को हाथ से उठाकर वह उसका आलिंगन करते हुए क्या कहने लगा, दुष्ट बुद्धि, बेटा उठ, जल्दी उठ, देख यह चंद्रास आया हुआ है, तू इसे मेरी कन्या विशाखा बहुत सा धन प्रदान कर। मैंने तुझे कठोर वचनों द्वारा पीड़ित किया था, क्या इसी कारण तू मुझसे रूठ गया है? पुत्र, इस समय मुझे वैष्णव से द्रोह करने का फल प्राप्त हो गया। तो दुष्ट बुद्धि ने यही किया ना, हमेशा वैष्णव का द्रोह किया, उसका फल मिला। विष्णु भक्तों से द्रोह करने वालों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। यह उक्ति तो बिल्कुल सत्य ही है, इसीलिए आज मेरा हृदय टूक टूक हो गया है। यह वही मदन है जिसका भगवान श्री कृष्ण में सदा प्रेम बना रहता था, तो मदन भी वैष्णव था। या ना तो शिवद्रोही था और ना योगियों को ही संताप देता था, तो अपने बाप से विपरीत स्वभाव का था ये, क्योंकि दुष्ट बुद्धि तो वैष्णव भी नहीं था, शिवद्रोही था और योगी को भी संताप देने वाला था, लेकिन मदन एकदम उल्टा था। मदन जो था वो कृष्ण का भक्त था, नहीं वो शिवद्रोही था, नहीं योगियों को संताप देने वाला था। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से विलाप करके दुष्ट बुद्धि उस समय धातुओं से विभूषित एक खंभे पर बड़े जोर से अपना सिर दे मारा। इसकी वजह से क्या हुआ, उसका मस्तक फट गया और फूटे हुए अंडे के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाद इस प्रकार दुष्ट बुद्धि तथा उसका पुत्र मदन उस मंदिर में पृथ्वी पर गिरे पड़े थे। तो कैसी ट्रेजेडी हो गई, दुष्ट बुद्धि ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो कोई तपस्वी पुष्प और जल लेकर उन देवी को स्नान कराने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए दिक्कत का मंदिर हो गया। वहां पहुंचकर जब उस तपस्वी ने देवी के मंदिर में प्रवेश किया, तब उसने सामने ही देखा कि दुष्ट बुद्धि और मदन बुझे हुए दीपक की भांति मरे पड़े हैं। तब वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, अहो यहां यह क्या हो गया, मुझे तो प्रतीत होता है कि नए राज्य का हल स्पष्ट प्रकट हुआ है। क्योंकि जो कुंतल नरेश के परम प्रिय थे वे मंत्री दृष्ट बुद्धि और मदन दोनों मार डाले गए। तब वह तपस्वी चंद्रहास को इसकी सूचना देने के लिए उनके पास आया। वहां पहुंचकर वह तपस्वी कहने लगा, राजन रात्रि के समय किसी ने दुष्ट बुद्धि और मदन को मार डाला है। वे दोनों नगर के बाहर स्थित चंडिका मंदिर में मरे पड़े हैं। अब आप शीघ्र ही इसकी छानबीन कीजिए। तो तपस्वी की बात सुनकर राजा चंद्रहास बहुत दुख में निमग्न हो गए। ये वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव जो है वो पर दुखे दुखी होता है। तो तपस्वी की बात सुनकर चंद्रहास बहुत दुखी हो गए कि क्योंकि ये तो दुष्ट बुद्धि तो उनके ससुर हैं और मदन उनके साले साहब हैं। और फिर वह आतुरतापूर्वक पैदल ही देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे दोनों पिता पुत्र देवी की मूर्ति के सामने मरे पड़े हैं। यह देखकर चंद्रहास यह बोल उठा, हे माता चंडिके, यदि आप मुझ पर रुष्ट हो गई हैं तो मुझे स्वीकार कर लीजिए, आपने व्यर्थ इन दोनों का वध कर दिया। ऐसा कहकर राजा चंद्रहास देवी के सामने दोनों पिता पुत्र को मृतक अवस्था में पड़ा देकर स्वयं स्नान करके शुद्ध हुआ। फिर उसने स्वस्ति वाचन करके शुभ लक्षणों से युक्त सुंदर चौकर कुंड खोदकर तैयार किया और उस कुंड में बलि एवं रक्षादीप के साथ साथ अग्नि स्थापन करके और घी मिश्रित सुंदर तिलों तथा शक्कर मिली हुई खीर की आहुतियां देने लगा। तब पश्चात वह देवी सूक्त का पाठ करके अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। इस प्रकार चंद्रहास ने अपने शरीर के पैर से लेकर मस्तक तक का सारा मांस काट कर होम दिया। उस समय केवल हड्डियों का मस्तक ही शेष। तब वह जगदंबिका से कहने लगा, माता आप चराचर जगत के गुरु विष्णु की चित्त शक्ति कहलाती हैं और आप ही सबसे पृथक रहकर भी सब कर्म से साक्षी हैं। इसलिए काली के अब मैं तलवार से अपना सिर काटता हूं। अंबिके, इससे आपके स्वरूप में विराजमान जगदीश्वर ऋषिकेश प्रसन्न हो। यह कहकर चंद्रहास ने ज्यों ही उस तलवार को अपने गले पर मारना चाहा, त्यों ही चंडिका देवी प्रकट हो गई और वे राजा चंद्रहास से बोली, चंद्रहास तुम इस प्रकार अपनी हत्या मत करो, यह पापी दृष्ट बुद्धि तो अपने ही कुकर्म से मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसके पुत्र मदन ने भी तो तुम्हारे ऋण को चुकाया है जिसे उसने पहले अपनी बहन के विवाह काल में संकल्प किया था। हरिभक्त, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम स्वेच्छानुसार मुझसे अपने किन्हीं दो मनोविलसित वरों को मांग लो, निश्चय ही तुम्हारा मंगल होगा। तब चंद्रहास बोला, जगत को पवित्र करने वाली देवी आपको प्रणाम है। माता मेरा पहला वर तो यह है कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरण में भक्ति बनी रहे। देखिए यहां चंद्रहास क्या वर मांग रहा है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की त्वयि, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की त्वयि। श्री हरि से कह रहे हैं महाप्रभु की केवल आपके चरण की मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो वही चंद्रहास चंडिका से मांग रहे हैं कि मेरी प्रत्येक जन्म में सदा श्री हरि के चरण में भक्ति बनी रहे और दूसरे वर के रूप में मैं यह याचना करता हूं कि ये मरे हुए दोनों पिता पुत्र जीवित हो जाएं। श्री देवी ने कहा, राजन श्री हरि के चरणों में तुम्हारी अविचल सात्विक की भक्ति बनी रहेगी और तुम्हारा पुत्र भी शूरवीर होगा जो अपनी भक्ति से श्री हरि को संतुष्ट कर देगा। चंद्रहास, कलयुग आने पर चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जो लोग अपने हृदय में भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन का ध्यान करके बचपन से लेकर अंत तक के तुम्हारी चरित्र को परम आदर के साथ निरंतर सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे, उनकी भक्ति भगवान श्री लक्ष्मीपति के चरण में सुदृढ़ हो जाएगी। महाबुद्धिमान चंद्रहास, अब तुम मेरे समीप आ जाओ और अपने दोनों नेत्र मूंद कर एक घड़ी के लिए यहां स्थिर होकर बैठ जाओ। तो यहां चंद्रहास स्वयं इस कथा को सुनने की का फल बता रहे, इसके फलश्रुति बता रहे हैं कि इसको नियमित रूप से पढ़ने से और सुनने से क्या होगा कि पढ़ने वाले की, श्रोता की भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। तो वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण होता है इस कथा को कहने सुनने से। नारद जी कहते अर्जुन, तब राजा चंद्रहास ने देवी के आदेशानुसार वैसा ही किया। उस समय खड्ग शक्ति, गदा और कमल आदि आयुधों से सुशोभित वे वैष्णवी शक्ति उठी और फिर उन्होंने राजा के मस्तक पर ज्ञान का उपदेश करने वाला अपना हाथ रख दिया। तदनंतर राजा चंद्रहास ने आंख खोलने पर देखा कि दुष्ट बुद्धि और मदन दोनों पूर्ववत रूप अवस्था और वेशभूषा से संयुक्त हो गए हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो अभी नींद से जगे हों। तो पूर्वत जैसे जैसे पहले थे वैसे ही के वैसे उनको वापस दिखाई दिए, जैसे अभी नींद से जगकर नींद से जगे हों। अभी उसने अपने शरीर को भी पहले की ही तरह क्षतहीन एवं चंदन चर्चित पाया, परंतु श्री हरि की मूर्ति स्वरूप आवे माता जगदम्बा पुनः न दिख पड़ी। तो वहां से वो अंतदान हो गए चंडिका देवी। उस समय देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। यह दृश्य देखकर चंद्रहास ने दुष्ट बुद्धि और मदन को प्रणाम किया, फिर अपने श्वसुर दुष्ट बुद्धि का आलिंगन पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करके इस प्रकार कहा। तो चंद्रहास ने कहा, श्वसुर जी, कौन मरा और कौन जीवित हुआ इस विषय में विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि यह सब तो श्री हरि की माया थी। इसलिए हम लोगों को सब तरह के प्रयत्न द्वारा उन अधोक्षर का ही भजन करना चाहिए। नारद जी कहते पार्थ, इस प्रकार आपत्तियों से मुक्त होकर वह विष्णु भक्त चंद्रहास दुष्ट बुद्धि और मदन के साथ अपने उत्तम नगर कुंतलपुर में प्रविष्ट हुआ। अर्जुन ने पूछा, महामुने, इस प्रकार चंद्रहास को तो प्रारब्धवश विशाल राज्य की प्राप्ति हो गई, परंतु उधर कुलिंद को जब बेड़ियों से जकड़कर कष्ट में डाल दिया गया, तब उसके बाद कुलिंद ने क्या किया, यह बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी कहते, महाबाहु अर्जुन, अब मैं कुलिंद के चरित्र का वर्णन करता हूं, सुनो। चंद्रहास के कुंतलपुर चले जाने पर जब दुष्ट बुद्धि कुलिंद को कष्ट देने लगा, तब उसने अपने मन में विचार किया कि बंधन से मुक्त करने वाले तो एकमात्र भगवान श्री हरि ही हैं। यह सोचकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने अपना सारा धन ब्राह्मण को दान कर दिया। फिर वह चंद्रहास के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, ऋषिकेश, मेरा चंद्रहास नाम वाला पुत्र आपका भक्त है, वह आपके ही ध्यान में तत्पर रहता है और उसे ही मुझे प्रदान किया है, अतः भगवान अब आप ही इस पापाचारी से उसकी रक्षा कीजिए। तो उस समय भी कुलिंद को अपनी रक्षा की चिंता नहीं थी, वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, श्री चंद्रहास से अपने पुत्र की रक्षा के लिए। तो ऐसा कह के निर्वेद को प्राप्त हुआ कुलिंद भगवत ध्यान परायण होकर अपनी पत्नी तथा भाई बंधु के साथ अपने उस घर में ही अग्नि में प्रवेश कर जाने का विचार करने लगा, क्योंकि वो लगा कि अभी हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसी समय कुछ लोगों ने दुष्ट बुद्धि के पास जाकर उससे यह निवेदन किया, स्वामी, राजा कुलिंद सदा से आपके हितकारी ही रहे, अतः आज वे दुख से व्याकुल होकर सपरिवार अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हैं। उन लोगों की वैसी बात सुनकर दुष्ट बुद्धि श्री हरि की प्रेरणा से वहां गया। वह अपने मन में सम्यक रूप से विचार करने लगा कि मैंने इसके पुत्र को तो मरवा ही दिया है, अब इस धनहीन वृद्ध क्यों होने दूं? पुत्रहीन होने के कारण या तो यौ ही मृतक तुल्य हो गया है, देव ने ही इसे मार गिराया है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श करके वह शीघ्र ही वहां पहुंचकर कुलिंद को रोकते हुए इस प्रकार कहने लगा, कुलिंद, तुम धन का अपहरण हो जाने के कारण विषाद मत करो, मैं तुम्हें पुनः बहुत सा धन, राज्य तथा नाना प्रकार के रत्न दूंगा। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि ने अनेक प्रकार की बातें कहकर उसे आश्वासन दिया, तब वह कुलिंद अपने पुत्र चंद्रहास से मिलने की बहुत बड़ी आशा करके उठा और फिर उसने दुष्ट बुद्धि को प्रणाम किया। इस प्रकार कुलिंद को भस्मा होने से रोककर दुष्ट बुद्धि अपने भवन को लौट गया। तत्पश्चात चंद्रहास ने कुंतलपुर में जो कुछ किया था वह सारा वृत्तांत कुलिंद ने भी सुना। उसे सुनकर वह परम आनंद में निमग्न हो गया। फिर उस धर्मात्मा ने भगवान श्री हरि को नमस्कार करके ब्राह्मणों तथा याचकों को धन देकर सब तरह से उन्हें दिया। उधर चंद्रहास ने भी कुंतलपुर का राज्य पाकर वहां के निवासी द्विजवरों की पूजा की और स्वयं भाई बंधुओं, ब्राह्मणों और मदन के साथ चंदनावतीपुरी जाकर अपने पिता कुलिंद तथा पुत्र वत्सला माता को कुंतलपुर लिवा लाया। तत्पश्चात 300 वर्षों से वह कुंतलपुर में राज्य कर रहा है। तो चंद्रहास ने 300 वर्ष तक कुंतलपुर में शासन किया, राज्य किया। इसी बीच में विषया ने मकरध्वज नामक बलवान पुत्र को जन्म दिया है और चंपक मालिनी के गर्भ से पद्माक्ष नाम वाला शूर पुत्र उत्पन्न हुआ है। महाबाहु अर्जुन इस प्रकार पूर्वकाल में बालक चंद्रहास शालग्राम शिला के संग से इस भवसागर को पार कर गया था, इसलिए मनुष्य को नित्य शालग्राम शिला की अर्चना करनी चाहिए।